ओम शांति। मोहन भाई जी का हम सभी एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं। राजयोगी ब्रह्मा कुमार मोहन भाई जी हम सबके सामने उपस्थित हैं। जैसे आप सभी देख रहे हैं कि बाबा का एक एक रतन, वैसे मुरली के लिए बाबा कहते मेरा एक एक ज्ञान रतन लाखों रुपयों का है, और बाबा का एक एक आत्मा रूपी रतन जो है वो तो इनवैल्यूएबल है, अमूल्य है। और आप सभी अनुभव कर रहे हैं कि बाबा के एक एक विशेष बच्चों ने बाबा का ज्ञान कितना गहराई से अपने आप में उतारा है। मोहन भाई जी भी अपने युवा काल से ही बाबा के ज्ञान में हैं, 50 से अधिक वर्षों से बाबा की सेवा में उपस्थित हैं, खुद इंजीनियर हैं और इंजीनियर विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे ज्ञान सरोवर एकेडमी जो है उनके भी कोऑर्डिनेटर हैं, डायरेक्टर हैं, और जितनी भी सेवा इंजीनियर विंग की होती है, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह, विदेशों में जाकर के भी बाबा का संदेश दिया है। आपको विशेष पर्यावरण श्री का अवार्ड भी मिला हुआ है, परंतु विशेष बात तो ये है कि आपने बाबा के ज्ञान को गहराई से चिंतन में लाया है, धारणा में लाया है, बाबा के योग को प्रयोग में लाया है, और इसीलिए आप देखेंगे कि मोहन भाई बिल्कुल सरल प्रकृति के, हमेशा उसके चेहरे पर आपको हास्य नजर आएगा। हर एक व्यक्ति के साथ बड़े निर्मलता से बात करते हैं, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण विषय को लिए हुए हमारे साथ चर्चा करेंगे। कौन सा विषय है? मन जीते जगत जीत। तो आपको जगत जीत बनने की युक्ति है ना, मन तो हमारे पास है, जगत विशाल है, तो मन को जीतने से ही जगत पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करेंगे मोहन भाई। ओम शांति।
ओम शांति। कुछ क्षणों के लिए हम सब यज्ञ की सबसे पहली स्टेज में पहुंच जाते हैं। आप सब भी मेरे साथ ओम शांति का उच्चारण करें। ओ शांति। जब भी हम लोग जीत अक्षर सुनते हैं, विक्ट्री, विजय, तो क्या होता है अंदर में, कैसी लहरें पैदा होती हैं? खुशी की, आनंद की, उमंग की, उत्साह की, सफलता, ये सब जो है जीत के साथ एसोसिएटेड है। और इसीलिए जब मन जीते जगत जीत कहा जाता है, तो स्वतः ही मन के अंदर ऐसी लहरें पैदा होनी चाहिए कि बस हम तो जो बाबा ने कहा है विजयी रतन है, तो ये जब विषय की चर्चा हो रही थी तो कोई भी विषय को अगर ठीक रीति से लिया जाए तो एक तो मन जीते जगत जीत, इसका भाव क्या है, अर्थ क्या है, पहली बात ये है। दूसरी बात, मन जीते जगत जीत, जिस व्यक्ति ने मन जीता होगा या जीतने के प्रोसेस में होगा उसके लक्षण क्या होंगे। तीसरी बात, जब मन जीते जगत जीत हो जाता है उसकी अनुभूति कैसी होती है, और साथ ही साथ जब मन के ऊपर व्यक्ति विक्ट्री विजय प्राप्त कर लेता है तो उससे अंतिम सफलता कौन सी मिलती है, इन बातों के ऊपर ही आज संक्षिप्त में हम लोग आपस में विचार करेंगे। तो इसका अर्थ क्या है शब्द का, मन जीते जगत जीत, इसका क्या अर्थ समझ सकते हैं? बड़ा सिंपल है, इसी के अंदर ही इसका उत्तर आ गया, जैसा बहन जी ने भी बताया। जगत के अंदर वास्तव में क्या क्या आ जाता है, क्या आता है जगत के, जब मन जीतते हैं तो जगत के अंदर मनुष्य तो आते ही हैं, पशु पक्षी जीव जंतु ये सब भी आते हैं, और प्रकृति के पांच तत्व भी आते हैं। तो इन सब को जीतना इसका आधार है, प्रोसेस है मन को जीतना। जब मन को जीत लिया जाता है तो जगत की सभी वस्तुओं के ऊपर विजय प्राप्त हो जाती है। अक्सर करके हम ये समझते हैं दूसरे व्यक्तियों का दिल जीतना, लेकिन नहीं, वो तो है ही, लेकिन हमारे शास्त्र भी पौराणिक गाथाएं भी इसके उदाहरण हैं कि जब द्वापर युग से ही हमारे साधु संत ऋषि मुनि तपस्वी मनीषी योगी लोग एकांत में भी जाते थे, जंगल में जाते थे, तो ऐसा बहुतों की कहानियों में आता है कि हिंसक प्राणी भी उनके सामने आते थे और बिल्कुल शांत अहिंसक हो जाते थे, क्योंकि उनके मन में इतनी शांति होती थी, उसके प्रकंपन वाइब्रेशन, और मन को जीत लिया और उन्होंने अगर ऑर्डर किया हिंसक प्राणी को भी बस वहीं रुक जाओ तो वहीं शांत होके बैठ जाते थे। इतिहास में इन सब के वर्णन है। तो मनुष्यों की बात तो बड़ी सहज है, मनुष्यों का दिल जीतना, तो लौकिक दुनिया में भी मनुष्य एक दूसरे का दिल जीत लेते हैं, लेकिन ऐसे पशु पक्षी जीव जंतु और प्रकृति के तत्व भी, प्रकृति के तत्वों पर भी विजय प्राप्त कर लेते थे, इसका कौन से उदाहरण मिलते हैं इतिहास में? ये हमारे संगीत तानसेन आदि, सिंपल बहुतों के उदाहरण है, लेकिन कहते थे तानसेन जब दीपक राग निकालते थे तो दीपक जल जाया करते थे, जब मल्हार राग निकालते थे तो वर्षा होने लगती थी, आदि आदि। तो प्रकृति के तत्वों पर भी इतना हमारा नियंत्रण हो, और आज हम देखेंगे ये प्रैक्टिकल बात है आज की दुनिया की, हम लोगों की देखी हुई, कैसे प्रकृति के तत्वों पर भी विजय पाना और पशु पक्षी जीव जंतु उन पर भी विजय पाना। तो ये है मन जीते जगत जीत का, और इसके साथ साथ क्या लक्षण है। हम सभी इस बात के इच्छुक हैं कि हम सब भी मन के ऊपर विजय प्राप्त करें, विजय जीवन में जीत पाएं और ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त करें, ऐसा है ना सबका लक्ष्य। बस एकदम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता पद की प्राप्ति कर ले, तो उसके लक्षण क्या है? हम उधर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, क्या लक्षण है उसके? मन को भक्ति मार्ग वालों ने बड़ा कठिन कह दिया है, मन तो भाई घोड़ा है, मन बड़ा चंचल है, इसको तो जीत नहीं सकते, और बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि ऐसा बोल के चले गए, तो सभी ने ये समझ लिया बड़ा मुश्किल है। लेकिन बाबा ने ही आके बताया, क्या बताया? मन तो तुम्हारी रचना है, हम रचयिता हैं, तो इसीलिए जो रचना है वो तो रचयिता के अंडर हो, रचयिता ऑर्डर करे और रचना माने। कैसे हम माने कि मन रचना है? कैसे माने? क्योंकि जब हम रचयिता हैं, जैसे स्थूल रीति से हमारी बहनें भी जब सप्ताह कोर्स वगैरह कराते हैं तो बताते हैं भाई ये शरीर आत्मा का वस्त्र है, आत्मा ने ये धारण किया, इसीलिए हम जब कहते हैं भाई मेरा शरीर, मैं अलग, मैं आत्मा, जैसे मेरा शरीर कहते हैं, जैसे मेरा रुमाल, भाई मेरा चश्मा, यानी वो अलग है और मैं अलग हूँ, मैं रचयिता हूँ, कंट्रोलर हूँ, और ये चश्मा, मेरा रुमाल, यहाँ तक कि मेरा शरीर, मेरी आंख, ये भी जैसे कि हमारी, जैसे हमारे पजेशन में है, जैसे ये कपड़ा या चश्मा पजेशन में, हमारे अधिकार में, ऐसे ही हमारी आंख, मेरी, मेरा कान, मेरी नाक, मेरा मुंह, मेरा शरीर, मेरा माने वो चीज अलग, उस पर हमारा अधिकार, अधिकार होता है मेरा हाथ, जिधर चाहे हाथ घुमा दे। ऐसे ही जब मेरा मन कहते हैं, मेरी बुद्धि कहते हैं, आज मेरा मन बड़ा विचलित है, बेचैन है, या आज मेरा मन बहुत शांत है, खुशी में है, यानी मेरा, वो मेरी पजेशन है, तो इसीलिए वो तो मेरे अधिकार में ही होना चाहिए, नहीं तो वो रचना ही क्या जो अगर रचयिता के अधिकार में ना हो। तो इसीलिए जब मेरा मन, मेरा संस्कार, मेरी बुद्धि, यानी ये सब मेरे क्रिएटेड हैं, मैंने क्रिएट किया है, क्योंकि मन होता है, जब बच्चा भी पैदा होता है कितना निर्मल होता है मन, जो है जब बस हंस रहा है, खुश हो रहा है, जो कुछ भी है, लेकिन साथ ही साथ जब बड़ा होता जाता है तो फिर जिस शरीर में होती है आत्मा, उसका प्रभाव, उसके संबंधों का, वातावरण का, सबका प्रभाव में आता जाता है, और फिर धीरे धीरे मन बलशाली हो जाता है। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा ने भी ये रियलाइज किया, पहले तो दादा लेखराज थे, प्रवृत्ति वाले थे, उनके भी कितने बच्चे थे ब्रह्मा बाबा के, ब्रह्मा बाबा नहीं दादा लेखराज, कितने? 5, हाँ, 2 लड़के 3 लड़की, बड़ा पूरा परिवार, धन धान्य से संपन्न सब थे, लेकिन जब बाबा को ये ज्ञान हुआ तो बस बाबा ने ये रियलाइज किया कि ज्ञान तो हुआ, वैराग भी आ रहा है, लेकिन मन जो है वो मेरे वश में नहीं, बैठता हूँ मन भाग जाता है, कभी धन की तरफ, कभी बच्चों की तरफ, कभी पोते पोतियां संबंधियों की तरफ। तो बाबा ने क्या किया, क्या किया? बाबा ने मन को पत्र लिखा, गौर से सुनना, हम लोगों को एक एक कॉपी दी गई थी बहुत साल पहले, लगभग मैं समझता हूँ 35-40 साल पहले, वरिष्ठ भ्राता थे आनंद किशोर जी, उन्होंने ब्रह्मा बाबा के हाथ का लिखा हुआ पत्र, मन को एड्रेस किया हुआ, क्या लिखा था पत्र में? हे मन, मैं आत्मा राजा हूँ, तू मेरा मंत्री है, लेकिन तू इतना बलशाली हो गया कि तूने मुझ आत्मा राजा को कमजोर कर दिया, और तू शक्तिशाली हो गया, और तेरे कहने पर मैं तेरे पीछे पीछे चलता रहा, जहाँ जहाँ तू मुझे ले जाता रहा मैं तेरे पीछे भागता रहा, मैं कमजोर हो गया। लेकिन हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूं कि मैं आत्मा राजा अपने स्वमान में स्थित हो गया हूं, हो रहा हूं, और अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं राजा हूं, तू मेरा मंत्री है। तुझ मंत्री को मुझे राजा के कहने पर चलना पड़ेगा। ऐसे बाबा ने ऑर्डर दिया मन को लिख करके। इसी तरह बाबा ने बुद्धि को भी एड्रेस किया कि हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर मन के पीछे पीछे चलती रही। मन अगर मंत्री है तो बुद्धि क्या है? सेनापति। और संस्कार है सैनिक। जैसे किंगडम होती है, कोई राजा ही होती है, तो राजा होता है, राजा का मंत्री होता है, और सेनापति और सेना ये सब होती है। तो आत्मा राजा का मन मंत्री है, बुद्धि सेनापति और संस्कार सैनिक। तो बाबा ने बुद्धि को भी पत्र लिखा कि हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर चलती रही और तुम दोनों ने मिलकर मुझे इतना शक्तिहीन कर दिया, कमजोर कर दिया, कि मैं भी राजा होते हुए भी तुम दोनों के कहने पर चलता रहा और भटकता रहा। लेकिन अब मैं तुझे भी कह देता हूं हे बुद्धि कि तुझे अब मेरे कहने पर चलना होगा। मैं तेरे कहने पर तेरे पीछे पीछे नहीं भागूंगा क्योंकि मैं राजा हूं। ऐसे बाबा ने मन और बुद्धि को ऑर्डर दिया। और उसके बाद से बाबा ने धीरे धीरे यह अनुभव किया कि हाँ, वास्तव में मन और बुद्धि मेरे अधिकार में आ गए। तो ऐसा ही ये हम बच्चों को, क्योंकि मन जीते जगत जीत, तो मन जीतने की क्या क्या विधि हैं वो भी इसके अंदर आती जाएंगी आज। तो पहली विधि यही है कि हम ये न कह दें मन बड़ा चंचल है, शक्तिशाली है और भाग जाता है, मैं क्या करूं, जैसे भक्ति मार्ग में कह देते हैं। नहीं, मन को हम ऑर्डर करें कि नहीं मन, तू मेरी रचना है, तुझे मेरे कहने पर चलना है क्योंकि मैं राजा हूं। और ये कह के, और ये कब होगा? ये तब नॉर्मल केस में भी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट होता है या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, तो जब तक वो सीट पर रहता है तब तक सब उसका ऑर्डर मानते हैं। और जब सीट पर नहीं रहा, रिटायर हो गया या इलेक्शन हार गए या और कोई ट्रांसफर हो गया गवर्नमेंट सर्वेंट का, दूसरा आ गया, तो दूसरे उसकी बात मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो सीट पर नहीं है। ऐसे हम चाहते तो हैं कि मन मेरे वश में हो, लेकिन क्या होता है कि चाहना ही रह जाती है, लेकिन वो क्यों नहीं होता? क्योंकि हम स्वमान की सीट पर बैठ करके उसे ऑर्डर नहीं करते। तो इसीलिए मन को यदि हमें जीतना है, कंट्रोल करना है, तो एक पहली बात यह कि हम अपने स्वमान की सीट पर स्थित होकर के उसके बाद मन को ऑर्डर करें, हे मन, या जिस शक्ति को भी बुलाए, मन की शक्ति को, मानो मुझे सहन शक्ति की अभी आवश्यकता है, या बुद्धि चारों तरफ भाग रही है, समेटने की शक्ति की आवश्यकता है, या समाने की शक्ति का मैं मुझे महसूसता हो रही है, होनी चाहिए। तो पहले मैं स्वमान की सीट पर स्थित हूं, हे मन, ये तो आओ तुम मेरे स्वमान की सीट पर स्थित हो। मैं भ्रकुटि में विराजित आत्मा हूं, मैं भगवान की, सर्वशक्तिवान परमात्मा की सिलेक्टेड संतान हूं, उसने मेरा सिलेक्शन किया है। सर्वशक्तिवान परमात्मा की मैं मस्तक मणि हूं, मैं उसकी विजय माला का मणका हूं, मैं उसकी दिल तख्त नशीन आत्मा हूं। ऐसे जो इतने स्वमान बाबा ने बताए हैं, उन स्वमान को पहले स्मृति में ला ला करके, ऐसी स्थिति में हम अपने को सुमान की सीट पर स्थित करके तब फिर उस शक्ति का आह्वान करें, मन को ऑर्डर करें, फिर आप देखो कि मन बिल्कुल नहीं भाग सकता, मन कंट्रोल में आ जाता है। तो बाबा ने यही किया एक तो, और कोई भी चीज का प्रमाण होना चाहिए ना। हम कहें कि हाँ मन मेरे वश में है, लेकिन वास्तव में वश में ना हो। हर चीज का प्रमाण होता है, उसकी विजिबिलिटी होती है, वो दिखता है। कोई भी चीज हो, शक्ति हो, गुण हो, किसी पे धन की शक्ति है वो दिखती है, मोटर कार मकान ये वो सब कुछ है। किसी पे तन की शक्ति है, चेहरे पर उसके रौनक होती है। इस रीति से ये सब जो बातें होती है, तन मन धन संबंधों में सुख होता है, सब प्रकार का खुशी। आज भी बाबा ने मुरली में बताया ना, क्या बताया आज की मुरली में ही बाबा ने, तन मन धन और मन वचन कर्म, ये तीनों जो है ना, एक तो सेवा साथ साथ भी हो और साथ ही साथ ये तीन जो है, मन वचन कर्म या तन मन धन, ये तीनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। क्यों? क्योंकि यही तीनों चीज हमें क्या बनाती हैं जीवन में, जो तीन चीज आवश्यक हैं, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी। यही तो चाहिए, हर मनुष्य खुशी चाहता है, तन का सुख चाहता है, बीमारी ना हो, मन भी खुशी में रहे, यही चीज है। तो इसलिए आवश्यकता एक ये है इन तीनों को साथ साथ चलाने की। एक तो बाबा ने ये किया, क्योंकि बाबा ही हमारे सामने इस चीज का वो है, उदाहरण है कि बाबा प्रवृत्ति में रहने वाला, घर गृहस्थी में रहने वाला, उल्टी सीढ़ी चढ़ा हुआ, फिर भी कितने साल में संपूर्ण बन गया? सिर्फ 33 साल में, 37 में ज्ञान हुआ, 69 में तो बाबा संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता बन गए, सूक्ष्म वतन में चले गए। सिर्फ 33 साल, हमें ही 50 से ज्यादा साल हो गए, और भी है 60 साल, 70 साल, 75, 78 साल वाले। लेकिन बाबा का पुरुषार्थ ऐसा था, हर जगह बाबा क्या करता था, अपना चेकिंग और चेंज, ऑडिट, अकाउंट में ऑडिट होता है या कोई भी चीज होती है ना, तो अपना हम अपने को देखते चले और जो हमारा लक्ष्य है उसे चेक करते चले। बाबा भी यही करता था। सबने सुना होगा, आप लोगों ने भी यज्ञ के शुरू में ना, या ध्यान के पार्ट के द्वारा ज्ञान के भिन्न भिन्न राज खुले। तो गुलजार दादी 9-10 साल के थे, वो एक बार ध्यान में गए तो उन्होंने क्या देखा ऊपर, तब तक कोई किसी को परम धाम सूक्ष्म वतन ये सब का कुछ राज नहीं था, सभी बस ब्रह्मा बाबा, कोई वो कृष्ण की आत्मा थी, देखते थे, रास करते थे, उसमें कृष्ण नारायण स्वर्ग की भासना आती थी, सारी ऐसी दुनिया, तो बाबा के साथ साथ रहते थे, वही बस संसार था। लेकिन एक बार जब 9-10 साल के थे ऊपर गए तो उन्होंने सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा को देखा, उसका कोई भी ज्ञान ही नहीं था, राजी नहीं था। वो जब नीचे आई तो उन्होंने मम्मा को कहा कि मम्मा आज मैंने बाबा को वहां देखा, बाबा तो हमारे साथ यहाँ है, आप सब लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो मम्मा ने कहा कि अच्छा मुझे तो मालूम नहीं, तुम बाबा से ही पूछना। फिर वो बाबा के पास गई गुलजार दादी, और छोटी बच्ची तो थे, बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा अच्छा बच्ची ये तो मुझे भी नहीं मालूम इसका राज, देखो कितना इनोसेंट रीति से, क्लियर रीति से, तो अगली बार जब तुम ध्यान में जाओ तो उनसे ही पूछना कि आप कौन हो, फिर उनसे राज पूछ के आना। तो अगली बार जब वो ध्यान में गई तो उनके पास गई, पूछा, तो उन्होंने क्या बताया, जो बाबा आपके पास है मैं उसी का संपूर्ण रूप हूं, उसको मेरे जैसा बनना है। तो आके उसने बता दिया गुलजार दादी ने बाबा को। बस जिस दिन से बाबा ने ये सुना, उस दिन से ही बाबा को ये हो गया कि बस मुझे वैसा बनना है, सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा जैसा। बाबा अक्सर पूछा करता था संदेश, क्या फर्क है उसमें और मुझमें, कि बाबा शक्ल सूरत तो सब आप जैसी है लेकिन बहुत तेजोमय है, आंख में तेज है, लाइट में बहुत आकर्षण मूरत है, चारों तरफ वाइब्रेशन उनके इतनी शक्तिशाली है। तो बस बाबा को वो लक्ष्य मिला, तब से बाबा बीच बीच में बार 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 अपने को चेकिंग करता था उस फाइनल स्टेज से और अपने को चेंज करता जाता था। और इसी कारण से बाबा सिर्फ 33 साल में बन गया, उससे दुगने साल वाले भी 66 साल वाले और हम सब 50 से ज्यादा कितने हैं, अभी तो उस तरफ बढ़ ही रहे हैं। तो एक ये चेकिंग और चेंज ये बहुत आवश्यक है। आज हम देखें कि मन कितनी बार भागा, देखा चंचल हुआ, हम जहां मन जीतने का मतलब क्या है, भाव क्या है, कि मन को हम जहां जितना समय जितनी देर और जितनी कंसंट्रेशन से जिस जगह लगाना चाहें उतना उस जगह लगा सकें, वो है मन जीतने का लक्षण। तो इसलिए हमें ये देखना, इसीलिए बाबा ने हमें 5 जगह का दिया है ना, याद है ना सबको, जो कई साल से बाबा ने कहा है मन को इन इन जगह ले जाओ, कौन कौन सी जगह सबको याद होगा अभी तो, हाँ हाँ बोलो, परम धाम, सतयुग, मध्य युग, हाँ, फरिश्ता, और फिर ब्राह्मण के बाद अंतिम फरिश्ता स्वरूप। तो ये सब क्यों कहा बाबा ने, मन जीते जगत जीत बनने के लिए, क्यों, क्योंकि जैसे हम परम धाम में बुद्धि ले जाएंगे, परम धाम से सतयुग तक आए, थोड़ी देर तक तो बुद्धि स्थिर रहेगी, फिर बुद्धि कहीं भाग जाएगी, फिर बुद्धि को पकड़ करके लाएंगे, फिर थोड़ा सा और आगे घूमे, फिर बुद्धि भाग जाएगी। तो मन जो है हमारी इच्छा के बिना न जाए, ये है मन जीतने का लक्षण। और ये तो एक लक्षण हुआ, दूसरा जिसने भी मन जीता हुआ होगा ना, या जीतने के प्रोसेस में काफी आगे तक गया होगा, उसकी सबसे बड़ी खूबी क्या होगी, वो दूसरे के मन के भावों को तुरंत पढ़ लेगा, और केवल पढ़ ही नहीं लेगा, इतना मन शक्तिशाली उसका हो गया होगा कि उसकी इच्छा को वो पूर्ण कर देगा। हमें ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का लगभग 7-8 वर्ष सौभाग्य मिला, 1961 के अंत में ज्ञान में लाए और 1969 तक कई बार बाबा के से मिले। और पहले हम देखते थे कि बाबा हम लोगों की सारी बातें पूछता था, और हाँ बच्चे क्या है जीवन कहानी अपनी, हर एक से बाबा कहते थे, लिखा आते थे, उसके बाद बस एक नजर में बाबा ने देखा, बस 10-15 पेज भी होते थे पलटा, हाँ देख लिया। तो बाबा की नजर उसी जगह जाती थी जहां करेक्शन करनी होती, चाहे अकाउंट का हो, चाहे किसी के जीवन कहानी का हो, कोई भी बात हो। तो शुरू में बाबा पूछता था कई बात, हाँ बच्चे कैसे हो, सब हम सब लोग बताते थे, बाबा सुन के समाधान देता था। फिर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, 65, 66, 67 हुआ, तो बाबा के पास जाते थे, बस 3-4 लाइन ही बोली, बाबा कहता था समझ गया बच्चे, बाबा समझ गया, अरे बाबा अभी तो हमने बोलना शुरू ही किया है, अभी पूरी बात नहीं बताई, नहीं बच्चे बाबा समझ गया, ये कह के फिर बाबा उसका समाधान दे देता था। लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ, कब हमें एक सौभाग्य विशेष मिला हुआ है, कौन सा सौभाग्य, कि जब बाबा ने शरीर छोड़ा 18 जनवरी 1969 को, तो उन दिनों वैसे हम पोस्टेड थे आसाम में बहुत दूर, लेकिन बाबा ने युक्ति से अपने पास बुला लिया और 17 जनवरी की सुबह हम बाबा के पास यहाँ मधुबन पहुंच गए, और 17 और 18 जनवरी को बाबा की संपूर्ण कर्मातीत अवस्था देखने का मौका मिला, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप की। तो क्या देख रहा हमने उस समय बाबा की तो कर्मातीत अवस्था के निकट था बिल्कुल बाबा अव्यक्त फरिश्ता मन जीते जगत जीत की स्थिति। तो लगभग 7 बार हमें मिलने का मौका मिला 17 और 18 तारीख को, पूरे 17 तारीख क्योंकि और पार्टियां थी नहीं बाबा के साथ साथ। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये देखी कि बस बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा से आज हम ये पूछेंगे सेवा की बात, ये पूछेंगे वहाँ ये सेवा चल रही है, आज धारणा की बात ये पूछेंगे, आज हमारा योग अपने मन की स्थिति की बात ये करेंगे आदि आदि। बस मन में संकल्प होता था, बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा बस ऐसे जरा सी दृष्टि दी, अब बाबा कहते बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। मतलब एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, इतना बाबा का अपने मन के ऊपर नियंत्रण हो गया था कि दूसरे के मन के भाव को एकदम पढ़ करके उसका समाधान दे देते। ये है मन जीते जगत जीत की स्थिति कि बिल्कुल बस बाबा के सम्मुख गए, दृष्टि दी बाबा ने और बस दृष्टि देते ही मन के भावों को पढ़ लिया और समाधान दे दिया। ऐसा ही हमको भी बनना है, केवल इतना ही नहीं, मन के भावों को पढ़ा और मन में अगर कोई इच्छा है उसकी पूर्ति की। हमें याद है ये हिस्ट्री हॉल है ना, हिस्ट्री हॉल में 18 जनवरी की रात्रि क्लास, हम सामने बैठे हुए थे ऐसे ही, बाबा मुरली चलाने के लिए रात्रि क्लास को आए, वहां भी 3 संदली पड़ी रहती थी, एक पे बाबा बैठते थे एक पे मामा बैठती थी और बीच की संदली खाली होती थी। जब पार्टियां जो भी आते थे, पहले जब आते थे तो एक एक करके आते थे, अपना परिचय देते थे वहां आके, और उसके बाद जब जाने का दिन होता था उससे एक दिन पहले फिर संदली पर आके, हमारा ये लक्ष्य है हम ये बात धारण करके लेकर के जा रहे हैं और ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, बीच में बैठ के बताते थे, बाबा भी सुनते थे, जब मामा थी मामा भी सुनते थे, और कोई करेक्शन हो देनी होती थी तो बाबा करेक्शन देते थे। तो बाबा ऐसे सामने मुरली चला रहे थे 18 तारीख को, हम सामने सुन रहे थे, तो देखो बैठे बैठे हमारे मन में एकदम संकल्प एक आया कि क्या ही अच्छा हो कि बाबा अगर हमारे लिए कोई हमारा नाम लेके कोई विशेष बात बोले। बस मन में संकल्प आया, और भक्ति में कहते हैं ना क्या कि भक्त के मन में इच्छा हुई और भगवान वो इच्छा पूरी करके क्या करता था भगवान, कोई बार्गेनिंग नहीं, मानो कि भक्त की इच्छा है मुझे मारुति कार मिल जाए, भगवान कहेगा नहीं कार छोड़ के स्कूटर ले लो, ऐसा कभी सुनते थे नहीं, भगवान का तो बस तथास्त, क्योंकि उसके लिए तो कोई भी चीज मतलब असंभव है ही नहीं। इसीलिए हमारे संकल्पों में कहीं भी कमजोरी ना हो। अक्सर होता क्या है, कभी बार बाबा मुरली चलाते हैं कौन लक्ष्मी नारायण बनेंगे, हम सब हाथ खड़ा करते हैं धीरे धीरे ही करके चाहे बाद में, और फिर बाहर आते हैं कहते हैं भाई बात तो बहुत अच्छी बाबा कहते हैं सबको बनना है, लेकिन हम कैसे बनेंगे, देखो दादियां हैं दीदियां हैं इतने बहनें जिन्होंने अपना जीवन समर्पण कर दिया, हम तो गृहस्थी वाले एक वक्त क्लास कर लेते हैं तो हम लोगों का इतना ऊंच पद कैसे होगा। बस जहां भी ये संकल्प आया और भगवान के मुंह से तथास्तु निकल गया तो क्या होगा, किसका नुकसान हुआ। तो इसीलिए ये संकल्प सिद्धि का समय चल रहा है, कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कमजोर संकल्प हम अपने या दूसरे के लिए ना करें, इसलिए ये आवश्यक है। और उस दिन हमने बस जैसे ही ये संकल्प किया बाबा कुछ बोले, बस भगवान तो संपूर्ण कर्मातीत अवस्था, बाबा संकल्प पहुंचा और बाबा ने तुरंत ही बस नाम लेके कुछ 5-6-7 महावाक्य उच्चार दिए, बहुत खुशी उमंग उल्लास बल भरने वाले, और ये इस बात का सूचक है कि जब हम भी अंत समय में मन जीते जगत जीत की स्थिति में होंगे तो हमारे सामने भी दुनिया की कोई भी आत्मा आएंगी, वो अपनी इच्छा पूर्ति का अनुभव करेंगी। वाह, इनके सम्मुख आए। अभी भी भक्ति मार्ग में भी ना, मानो लोग कहते हैं अरे ये बात हो जाए तो मैं चलो भगवान जी को प्रसाद चढ़ाऊंगे, या ये मनौती मना लेते हैं ये तीर्थ यात्रा करके आएंगे आदि आदि। तो जब भक्ति मार्ग में भी सम्मुख भी नहीं है, उनकी जड़ मूर्तियां हैं, उनके सम्मुख हम समझते हमारी इच्छा पूर्ति हो गई, भगवान ने मेरी इच्छा को पूर्ण किया, तो हम तो चैतन्य आत्माएं हैं। इतने भक्त आत्माओं की जो है इष्ट देव और इष्ट देवियां हैं। तो इसीलिए हमारे मन में ना उन भक्त आत्माओं के लिए इतनी ऊंची भावना हो, बस भक्त आए हम उसकी इच्छा को पढ़ सकें और उसकी इच्छा का समाधान कर सके, पूर्ण कर सके उसकी इच्छा। अगर हमारी मन जीते स्थिति होगी तो जो भी आएगा उसके मन के अंदर जो संकल्प चल रहा है उसके भावों को पढ़ के हम तुरंत उसकी इच्छा को पूर्ण कर सकेंगे। और ये प्रत्यक्ष बाबा में दिखता था। तो ये जो है एक ये स्थिति मन जीते की, धीरे धीरे हम चेक करते जाएं, अक्सर करके कई बार होता है अरे किसी को याद करते हैं और वो सामने आ जाता है, अरे अभी अभी तो मैं आपको याद कर रहे थे आप एकदम सामने आ गए। यानी उस समय हमारी ना ये स्थिति होती है कि मन में उससे मिलने का भाव बहुत शक्तिशाली होता है, कोई कार्य होता है कोई बात होती है और वो इतना शक्तिशाली कि दूसरे मन के संकल्पों के ऊपर विजय पाया हुआ होता है वो संकल्प, तो तुरंत ही वो व्यक्ति का आगमन भी हो जाता है। तो ऐसा बस ये देखा 18 जनवरी को बाबा का, तो ये बाबा की एक स्थिति का देखा। और क्या देखा, जब जितना जितना मन जीते जगत जीत होगा ना तो उतना हमारे जो शरीर के कर्म भोग होंगे उन पर हमारा योग बल जो है संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर। शरीर के कर्म भोग तो होते ही हैं, लेकिन वो कर्म भोग हमें परेशान न करे, ऐसी स्थिति हो। वैसे देखो बाबा को ना कई बार खांसी आती थी, इतनी एज थी 93 इयर्स साकार बाबा को, तो कई बार खांसते खांसते ऐसा लगता था आंख भी गीली हो जाती थी, लगता था कि बाबा को जैसे बड़ा कष्ट हो रहा है, लेकिन तुरंत ही बाबा की स्वस्थिति इतनी मजबूत होती थी, मन की पावर, मन जीते की स्थिति, कि बस तुरंत ही परिस्थिति के ऊपर बाबा विजय प्राप्त कर लेता था और बस एकदम बाबा कहता था कि देखो ये बाबा की सखी है, खांसी को क्या बोलते थे बाबा, बाबा की सखी है, फ्रेंड है। मैं शिव बाबा को कई बार बोलता हूँ बाबा इस सखी से मेरा पीछा छुड़ाओ, तो शिव बाबा क्या बोलते हैं कि बच्चे ये तो तुम्हारा कर्म भोग है, तुम्हें ही चुकतू करना है, अगर तुम्हें मैं छुड़ाऊं तो सभी बच्चों से को छुड़ाना पड़ेगा, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल तो भुगतना ही है। तो भाव क्या है कहने का कि हमारी स्वस्थिति इतनी शक्तिशाली होती जाए कि कोई भी परिस्थिति हो, शरीर की हो, बाहर की परिस्थिति हो, तत्वों की हो, संबंधों की हो, कोई भी परिस्थिति हो उस पर हम पूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर ले। असली ब्यूटी ये होनी चाहिए। और बाबा का भी यही दिखता था। उसको बाबा कैसे अचीव करते थे, बस आ रहा है कोई खांसी या कुछ, तुरंत बाबा के पास ट्रांसलाइट का चित्र रखा रहता था कृष्ण का, वो बस बच्चे देखो आज तो ये पुराना शरीर है, खांसी है, तकलीफ है, कल बाबा जाके ऐसा मिचनु कृष्ण बनेगा, नई दुनिया होगी, कितने सुख होंगे। बस ये कहते ही जैसे बाबा का भाव, बस परिस्थितियां शांत हो जाती थी, खांसी है, तकलीफ है, और तुरंत ही स्वस्थिति की इतनी शक्ति होती थी, सेकंड में ही बाबा के चेहरे पर वो खुशी की लहर दौड़ जाती थी। तो हम भी अगर इस रीति से मन जीते जगत जीत की स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या करें, अपनी स्वस्थिति को इतनी मजबूत करते चले और उसका ट्रायल करते चले परिस्थितियों के ऊपर। ये तो व्यक्तियों का तो बहुत देखा, जो भी बाबा के सम्मुख आते थे और बस सोचते थे ये बोलेंगे, बाबा के सम्मुख आए, एक आध कुछ अक्षर बोला और बस बाबा के नैनों में इतनी शक्ति, वाणी में इतनी, तुरंत ही उसका समाधान हो जाता था। आजकल जहाँ डिस्पेंसरी है ना नीचे, वो कच्ची जगह थी उधर कमरा, तो उधर से बाबा भी आ रहे थे और बाबा ने देखा कुछ बच्चे 3-4 वो है, अरे अरे पकड़ो मारो, ऐसी आवाज आ रही थी। बाबा ने कहा बच्चे क्या है, बाबा ये सांप, एक बड़ा सांप निकला और बस वहीं घूम रहा था उधर ही। तो कुछ भाई लोग डंडा वंडा लेकर आए, तो देखो बाबा की तो ऐसी नेचुरल स्थिति, अरे 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 बच्चे क्यों बच्चे को मारते हो, बाबा का हर एक के लिए बच्चा बच्ची यही है, क्यों मारते हो बच्चे को, उसको पकड़ के बाहर छोड़ आओ। तो अब कौन पकड़े, तो बाबा ने एक भाई को कहा कि भाई उसको नाम बुला के बलदेव इसे पकड़ के, और मटकी एक मंगाई बाबा ने। अब उसे तो डर लगे भाई को, बड़ा मुश्किल। बाबा ने कहा नहीं बच्चे लो, तुम डरते हो बाबा पकड़ता है। बाबा थोड़ा आगे बढ़े तो सबने रोक दिया, नहीं नहीं बाबा आप नहीं, वो भाई नहीं, बस गया, बस बाबा को याद करके पूंछ से पकड़ा और उस मटकी में डाला, उसे बंद करके बाहर छोड़ दिया। तो स्वस्थिति ऐसी हो जो कोई भी ये पशु पक्षी जीव जो भक्ति मार्ग में पढ़ते थे वो तो तबका पढ़ते थे, लेकिन ये तो प्रत्यक्ष यहाँ पर ऐसा कितनी बार ऐसा देखा, क्योंकि ये तो बिल्कुल सारा कच्चा और बिल्कुल जंगल का एरिया था, यहाँ तो कोई पॉपुलेशन ही चारों तरफ कुछ होती नहीं थी। 1962 से तो हमने यहाँ आना शुरू करा, 62 से बिल्कुल जंगल जैसा, कोई भी यहाँ पर पॉपुलेशन वगैरह नहीं होती थी, ऐसी स्थिति थी। तो पशु पक्षी जीव जंतु यहाँ तक की प्रकृति के तत्व, उसका तो देखा किस रीति से बाबा ने ना 18 जनवरी को ऐसी मुरली चलाई, और मुरली चला के बस बाबा आए, हर एक को बस दृष्टि दी, मुरली चला के खड़े हुए। और उस दिन 18 जनवरी को बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई, नहीं तो 18 की सुबह, 17 की शाम, 17 की सुबह, काफी बाबा को जैसे सर्दी की वजह से ना बीच बीच में खांसी वगैरह आती थी, लेकिन 18 तारीख की मुरली सुनो आप, वो अभी भी वहां पर मिलती है ओम शांति भवन में, नीचे जो ऑडियो विजुअल सेक्शन है साकार अंतिम मुरली, वो सीडी मिलती है, ले सकते हैं। तो बस बाबा की वो मुरली में एक बार भी खांसी नहीं आई, जो इस बात का प्रतीक है कि शरीर के कर्म भोगों के ऊपर हमारा योग बल अंतिम समय में बिल्कुल विजय प्राप्त कर लेता। फिर उसके बाद बाबा उठे, बस हर एक बच्चे को दृष्टि दी, अच्छा मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग या गुड नाइट कह के बाबा एक दो कदम आगे बढ़े, फिर बाबा रुके, फिर एक एक बच्चे को बाबा ने दृष्टि दी, फिर बाबा एक कदम आगे बढ़े, फिर रुके। तो बाबा को हो कि आज मैं अंतिम, क्योंकि बाबा को तो मालूम था शिव बाबा को कि आज इस ब्रह्मा तन के द्वारा अंतिम बार साकार मिलन हो रहा है। फिर बाबा बाहर गए, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेता है कह के बाबा आगे बढ़े। कभी भी पहले बाबा ने विदाई शब्द नहीं बोला, ये इस बात का प्रतीक है कि हम भी बच्चे जब शरीर छोड़ेंगे ना, अंत समय तो हमें भी भीष्म पितामह की तरह बस इच्छा मृत्यु का हमें भी आभास हो जाएगा कि हाँ बाबा बस अब हम आपके पास आए किया है, जिससे कोई भी अगर मानो परिस्थिति वश हमारा शरीर छूटा, कहीं अर्थक्वेक हुआ, फ्लड आया, प्रकृति के पांच तत्वों की हलचल हुई किसी परेशानी की वजह से, तो वो तो अंतमते सोगति हो जाएगी और फिर तो बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि सारा आधार हमारा उस अंतिम श्वास पर है जब ये प्राण तन से निकलेंगे, हमारा अंतिम श्वास होगा उस समय हमारी मन की स्थिति ऐसी होनी चाहिए और कोई याद ना है। अंतमते सोगति का गायन इसी के लिए है, तो इसीलिए अंतमते लौकिक दुनिया में भी अंतमते सोगति होती है। जो जॉब करता है, नौकरी करता है ना व्यक्ति, तो जो उसका लास्ट पे होती है ना एलपीसी लास्ट पे सर्टिफिकेट, उसके आधार पर ही पूरा रिटायरमेंट की पेंशन हो या ग्रेजुएटी का या दूसरी चीजें जो है उसको सारे बेनिफिट उस आधार पर ही मिलते हैं, लास्ट पे ड्रॉन जो होती है। तो इस रीति से अंत में हमारी जो स्थिति होगी, और वो स्थिति होगी जो हमारी बहुत काल से स्थिति होगी, हम सोचें कि हमारे अंत में कर लेंगे, नहीं, अगर बहुत काल से हमने इसका अभ्यास नहीं किया है तो अंत में भी वो स्थिति नहीं होगी। तो ये करके बाबा गए और बस दादी के हाथ में हाथ बाबा ने दे त्याग कर दिया। लेकिन आश्चर्य तो उसके बाद हुआ, क्या आश्चर्य कि बाबा का वो शरीर अब 18 जनवरी को 18 की पूरी रात रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 को भी दोपहर के बाद 2 बजे बाबा का वो संस्कार किया गया। हम तो यहाँ पर थे ही पहले से और देखा, इतने समय के बाद भी न बाबा को कोई इंजेक्शन दिया गया, न कोई केमिकल लोशन लगाया गया, कुछ नहीं, यहाँ तो कुछ था ही नहीं उधर, लेकिन बाबा का शरीर वैसे ही चमकता हुआ रहा। और अंत में जब स्नान आदि करा के जहाँ शांति स्तंभ है यहाँ पर बाबा का अग्नि संस्कार किया था, तो बाबा का शरीर बिल्कुल वैसे ही गोरा रंग और चमकता हुआ शरीर लग रहा था जैसे बाबा सो रहा है। और हमेशा ही जैसे बाबा साकार में ना जब बच्चों से मिलता था, कहता आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, ऐसे बाबा हाथ आगे बढ़ा देता था और चुंबक की तरह हम लोग खींचते हुए बाबा के पास आ जाते थे। और जैसे ही बाबा के सानिध्य में आते थे बस तुरंत ही अशरीरी हो जाते थे, देहभान से परे हो जाते थे, क्योंकि बाबा ने यह अभ्यास अपने को इतना पक्का करा हुआ था, मैं आत्मा हूँ, पढ़ा होगा सबने, जसोदा आत्मा है निर्मला, हर एक को एक एक का, तो क्या था जिसको भी बाबा देखता था वो अशरीरी हो जाता था और बस बाबा की बाह में गए अशरीरी कुछ मिनटों के लिए। फिर बाबा ऐसे थपथपा दिया करता था, आओ बच्चे आओ, तो जैसे हम फिर शरीर में आते थे, फिर बाबा हालचाल पूछता था, टोली खिलाता था और परिचय सारा पूछ के फिर एक जाता था, फिर दूसरा आता था, तीसरा आता था, सारी पार्टी मिलती थी। लेकिन एक एक को अशरीरीपन का ऐसा अनुभव होता था, क्यों? क्योंकि बाबा खुद अशरीरी स्थिति में स्थित था। ऐसे हमें भी ना खुद अशरीरीपन की स्थिति में अगर हम स्थित होंगे, मन जीते की स्थिति में स्थित होंगे, तो बस कोई बहुत हलचल वाली आत्मा भी आएगी सम्मुख, और सम्मुख आते ही हमारी थोड़ी भी दृष्टि उसके ऊपर पड़ी, हमारा ऑरा, हमारे वाइब्रेशन, वो तुरंत ही हलचल से परे हो जाएगी, अचल स्थिति में आ जाएगी, ऐसी अनुभूति करेगी, तभी तो उसे ये होगा कि हाँ 2500 साल तक कि ये मेरे इष्ट देव है। अंत समय उन्हें यहाँ ये हम अनुभूति इस चैतन्य शरीर से कराएंगे, तो भक्ति मार्ग में वो हमारी मूर्तियां बना करके उसके आगे उन चीजों की कामना करेगी और उन मूर्तियों से उसे अपनी इच्छा की पूर्ति की अनुभूति होगी। लेकिन वो तब होगी जब हम यहाँ हम चैतन्य में उसे ये अनुभव कराएंगे, और वो अनुभव तब करा सकेंगे जब हमने ये खुद अनुभव किया होगा। तो अभी ये आवश्यकता है अपने को अशरीर बनने की, और बाबा को जो मैं बता रहा था शरीर छोड़ा, 21 जनवरी को संस्कार किया गया, ऐसे ही चमकता हुआ शरीर, न काला पड़ा शरीर, और सबसे बड़ी बात ये शरीर में अकड़न बहुत कम, बिल्कुल बाबा का ऐसा ही फ्लेक्सिबल शरीर। नहीं तो जब आत्मा शरीर छोड़ के जाती है शरीर स्टिफ हो जाता है, अकड़ जाता है, बाबा का बिल्कुल जैसे एकदम। यह है प्रकृति के 5 तत्वों पर विजय का प्रतीक। तत्वों पर भी बाबा ने इतनी विजय प्राप्त कर रखी थी कि अंत समय भी जब आत्मा भी शरीर छोड़ के चली गई तो भी उन तत्वों ने जैसे अंत समय तक बाबा का पूरा साथ दिया, न कोई काला पड़ा, न कोई दुर्गंध आई, न कोई शरीर में अकड़न आदि हुई। बहुत बार हमने डॉक्टरों से पूछा लेकिन कोई भी डॉक्टर इसका जवाब नहीं दे सका, कहते हैं ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन हमने तो खुद अपनी आंखों से, सब यज्ञ के बड़े बड़े भाई बहनों ने अपनी आंखों से देखा कितना बाबा का कोरा चमकता हुआ शरीर, फ्लेक्सिबल बिल्कुल। यह है 5 तत्वों पर, जगत जीत के अंदर 5 तत्व भी आते हैं ना, तो ये 5 तत्वों पर विजय का प्रतीक है। तो इसीलिए बाबा कहता है हम अपने को तो पावन बनाए, योग बल से सेवा भी करें, अन्य आत्माओं को भी संदेश दें, लेकिन प्रकृति के 5 तत्वों को भी पावन करें। तो ये बाबा का और प्रत्यक्ष देखा, और क्या ये साथ साथ एक एक लक्षण अंत समय तक है? बाबा का वो सब सुना होगा आपने कि बाबा तो कृष्ण की, नारायण की आत्मा थी, हर एक को वही साक्षात्कार होते थे, लेकिन फिर भी एक भाई उस समय ना, एक परिवार आता था सिख परिवार, मतलब भाई नहीं आता था, परिवार आता था ज्ञान में, तो सिख वो भाई को थोड़ा सा रोष था अंदर से, तो एक बार निश्चय किया कि मैं इनको मार दूंगा, और वो बस बाबा के पास गया छुरा लेकर के छिपा करके, सबने जीवन कहानी में पढ़ा होगा। और बहन ने बाबा के पास बिठाया और बहन चली गई, तो उसने मौका देख के छुरी निकाली और मारने को हुआ, तो उसे क्या हुआ, उसे गुरु नानक देव का साक्षात्कार। अब बाबा तो कृष्ण की आत्मा, नारायण की, सभी को वही साक्षात्कार होते थे, रास करते थे, लेकिन कोई गुरु नानक देव की तो आत्मा थी नहीं बाबा। लेकिन कहते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी, तो जिसकी उसकी श्रद्धा सिख परिवार के होने की वजह से श्रद्धा गुरु नानक देव में थी, तो शिव बाबा ने उस शरीर के द्वारा गुरु नानक देव का साक्षात्कार करा। ऐसे ही अंत समय बाबा हमारे द्वारा अनेक आत्माओं को अनेक प्रकार के साक्षात्कार, जो इच्छा लेके, हम तो एक ही हैं, लेकिन हमारे सामने मानो 6 भक्त आए अलग अलग, कोई देवी का भक्त है, कोई राम का, कोई कृष्ण का, कोई हनुमान का, अलग अलग इच्छा लेके आए हैं साक्षात्कार की, क्योंकि अंत समय जब चारों तरफ हाहाकार होगा, भगवान की तरफ सबकी बुद्धि जाएगी, हे प्रभु, हे भगवान रक्षा करो, हे प्रभु, बस अंदर से जब बोलेंगे, इच्छा लेकर के आएंगे, तो हम तो एक ही होंगे, लेकिन हम वही है, लेकिन साक्षात्कार की चाबी तो शिव बाबा के पास है, तो बाबा हमारे द्वारा उनको वो साक्षात्कार कराएगा जो वो इच्छा लेकर, जिसके वो भक्त है, जिनके प्रति उनकी श्रद्धा है, भावना है, जो उनका इष्ट देव और इष्ट देवियां हैं, उनका साक्षात्कार बाबा कराएगा, उसी से ही तो उन्हें तृप्ति का अनुभव होगा। जैसे वो सिख को जब उसने गुरु नानक देव का साक्षात्कार किया, बस वो तो वैराग्य हो गया, हे भगवान मैं क्या करने जा रहा था, पश्चाताप होने लगा, आंखों से आंसू निकलने लगे, मैं कितना गलत काम करने जा रहा था, आपको मारने जा रहा था। तो भाव क्या है कि हमारे द्वारा, लेकिन बस कंडीशन एक यही है बाबा की कि अपना तन और मन ये दोनों पवित्र रखो। बस जितना हमारा तन और मन, ये तन पवित्र होगा, जितना मन हमारा, मन जीते होगा, पवित्र होगा, बस फिर देखो बाबा हमारे इस शरीर के द्वारा क्या क्या खेल कराता है, क्या क्या साक्षात्कार। अंत में जो बाबा ने कहा ये पार्ट, ये सब हमारे आपके सबके द्वारा ये ही पार्ट चलते, तो इसलिए प्रकृति जीत भी यहां पर हमें बनना है। बाकी सब तो ठीक है, प्रकृति जीत कैसे बनते हैं हाँ, तो बाबा ने यही बोला कि ये प्रकृति अंत समय में हमारे दुख का, अशांति का या प्राण लेने का कारण न बने, क्योंकि पांच तत्वों की इतनी हलचल होगी ना, दुनिया की अधिकतर आत्माएं, भारत की विशेष करके, ये प्रकृति के तत्व ही हलचल उनकी, उन दुनिया के विनाश का कारण बनेंगे। लेकिन हमारे विनाश का कारण न बने उसके लिए एक बात, एक एक बात बस बुद्धि में रखना। हा? कौन सा तत्व ज्यादा हलचल करेंगे? हा? एक पृथ्वी तत्व, भूचाल बहुत आएंगे चारों तरफ, एक सेकंड में ही अनेक बिल्डिंग गिर जाती हैं, अनेक त्राही त्राही मच जाती है, जैसा स्थिति होती है। लेकिन बाबा ने कहा अगर आप बच्चों की बुद्धि योग मेरे साथ है तो क्या होगा, बुद्धि मेरे साथ है तो आपके पांव ऑटोमेटिकली उधर चलेंगे जहां सेफ्टी होगी, और बस उसके लिए क्या है, इन तत्वों को बस अपना मित्र बना लो। ये तत्व जो है इनके साथ अपने संस्कारों को मैच करो, ये है प्रकृति के प्रति हमारी शुभ भावना, शुभ कामना। पृथ्वी में कौन सा गुण होता है सबसे बड़ा? सहनशीलता। उससे भी बड़ा गुण है पृथ्वी का, कौन सा? दातापन का। पृथ्वी देती है, एक बीज बो दो पेड़ निकल आएगा, हजारों बीज पैदा हो जाएंगे, दाता है पृथ्वी। ऐसे ही अगर हमने दातापन का गुण धारण कर लिया ना, हमारे सम्मुख जो आए, अब स्थूल चीजें तो लिमिट होती है, कपड़ा है, अनाज है, ये तो नहीं दे सकते सबको, हमारी जो भी परिस्थिति, लेकिन हर एक के प्रति प्रेम, शुभ भावना, शुभ कामना, सद्भाव, आदर, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, बस इसमें तो कुछ खर्चा होता नहीं, ये हम हरेक को देते चले दाता बनके, तो जैसे पृथ्वी के साथ मैंने अपना गुण मैच कर लिया तो पृथ्वी हमारी मृत्यु का, दुख का, अशांति का कारण कभी नहीं बन सकती, क्योंकि मित्र कभी मित्र की जान नहीं लेता, मित्र हमेशा मित्र की रक्षा करता है। ऐसी दूसरा ये तत्व जो विनाश का मुख्य कारण जल है, चारों तरफ बाढ़ आएगी। देखो उत्तराखंड में पिछले साल देखा ना, केदारनाथ में एक तरफ बादल फटे वो जल, दूसरी तरफ बाढ़ आ गई, क्लाउड बर्स्ट हुआ और लैंडस्लाइड्स हो गया, दो तीन तत्वों की हलचल में कितने हजारों लोग मर गए। और ये तो ऐसे ही जल हमारी मृत्यु का कारण न बने, तो जल का कौन सा गुण होता है सबसे बड़ा? शीतलता। और उससे भी बड़ा गुण एडजस्टमेंट। जल जो है हर जगह अपने को एडजस्ट कर लेता, फ्लेक्सिबिलिटी। गिलास में लो, गिलास में सेट हो जाएगा, कटोरी में लो, कटोरी में, थाली में लो, थाली में, चम्मच में भी लो, चम्मच में, हर जगह सेट हो जाता है। ऐसे ही जल की तरह हम अपना स्वभाव, नेचर ऐसी बना लें हर आत्मा के साथ हम एडजस्ट होके चल सके। ऐसा ना बोले कि इनके साथ तो एडजस्ट होना बहुत आसान है, इनके साथ मुश्किल है, नहीं, हर आत्मा के साथ हम इतने फ्लेक्सिबल, इतने एडजस्टेबल नेचर हो, हर एक को ये लगे ये मेरे हैं। बाबा के साथ यही लगता था, बूढ़े के साथ बूढ़ा, जवान के साथ जवान, छोटे बच्चे के साथ बाबा बच्चा जैसा, हर एक को लगता था बाबा मेरा है। तो अपनेपन की फीलिंग तभी आएगी जब हम अपने संस्कारों को वो मैच कर लें, और एडजस्टेबल नेचर होगी तो क्या होगा, चाहे जितना भी फ्लड आएगा, सुनामी आएगी, क्लाउड बर्स्ट होंगे, बाढ़ आए, कुछ भी हो, सबको बहा के ले जाएगी, लेकिन ऑटोमेटिकली हमारे पांव उधर बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी, जहां जल हमारा बाल बांका नहीं कर सकेगा, क्योंकि जल को हमने अपना मित्र बना लिया। ऐसे वायु है? बहुत जब आता है तो साइक्लोन, अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल राष्ट्र है दुनिया का, लेकिन प्रकृति के आगे हर साल घुटने टेक देता है। साइक्लोन आता है, कहीं पर कोई अलग अलग प्रकार के लैला साइक्लोन है, कहीं पर अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन इतने कई सैकड़ों 250 किलोमीटर 400 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलती है, सबको उड़ा के ले जाती है, मृत्यु का कारण बन जाती है। लेकिन साइक्लोन हवा में क्या गुण होता है मुख्य, सबसे बड़ा गुण क्या है वायु का? हर चीज को उड़ाती है, हल्की होती है। पृथ्वी हर चीज को नीचे खींचती है, वायु हर चीज को ऊपर उठाती है। ऐसी वायु का अगर हमने गुण धारण किया होगा ना, हल्केपन का, कोई परिस्थिति हो लेकिन हम भारी ना बने। नहीं तो कई बार भारी हो जाते हैं, बोलने का दिल नहीं करता, एकांत बाबा गम हो जाता है, खुशी गायब हो जाती है। बाबा ये नहीं चाहता, बाबा चाहता हर परिस्थिति में हल्के रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। तो क्या होगा, जितने भी साइक्लोन आए, कुछ आए, वो हमारे मृत्यु का, दुख अशांति का कारण नहीं बन सकते। वायु की तरह अगर हमने हल्का रहना सीख लिया। आकाश का कौन सा बड़ा गुण होता है? विशालता। और आकाश के कारण ही आज हम मोबाइल से बात कर सकते हैं, टीवी देखते हैं, रेडियो, जो भी है कम्युनिकेशन का साधन, ये है आकाश। क्योंकि उसमें सैटेलाइट वैज्ञानिकों ने छोड़े हुए हैं और उन सैटेलाइट के द्वारा इधर से हम बोलते हैं, उधर से टकरा के साउंड वेव आती है, दूसरा सुन सकता है, देख सकते हैं पिक्चर। ऐसे ही आकाश की तरह हमारा हृदय विशाल हो, हमारा किसी से भी कम्युनिकेशन टूटा हुआ ना हो। होता क्या है, जिनसे हमारे संबंध अच्छे होते हैं, मधुर होते हैं, उनसे तो हम खूब बात करते हैं, प्रेम से बात करते रहेंगे, टाइम भी निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। और जिनसे संबंध अच्छे नहीं होते और हम नहीं चाहते, वो सामने से भी अगर आ रहा होगा ना, तो हम नजर बचा के निकल जाएंगे, बात नहीं करते, दृष्टि नहीं देते, उसे मिलते नहीं है। क्यों? क्योंकि संबंधों में मधुरता नहीं है, कटुता है। तो आवश्यकता यह है आकाश की तरह हम विशाल हृदय वाले बने। बस, तो उससे क्या होगा कि आकाश मार्ग से आने वाले जो भी विनाश के साधन होंगे, बम होगा, एटम बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइल, कोई रॉकेट, कोई भी चीज होगी, तो वो हमारे मृत्यु का, विनाश का कारण नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि आकाश को हमने मित्र बना लिया, तो आकाश मार्ग से जो भी चीजें आने वाली होंगी ना, वो हमारा बाल बांका नहीं कर सकते। और इसी तरह कौन सा तत्व रह गया, पांचवा, अग्नि। हाँ, प्रकृति में अग्नि का स्वरूप क्या है? सूर्य, सूरज है ना, लाइट और गर्मी देता है। तो बस देखो, सूरज जैसे होता है स्वरूप बदल देता है। अंधेरा है, रात है, सूरज की किरण आई, सारी दुनिया का स्वरूप बदल गया, लाइट हो गई, जीवन शुरू हो गया, पक्षी चहचहाने लगे, सारा जीवन हो गया। तो ऐसे ही अग्नि में कोई भी चीज डालो, उसका रूप बदल जाता है। बाबा भी चाहते हैं हमारी ऐसी ज्वालामुखी अग्नि, योग की ज्वाला ऐसी जरी हुई हो, बस दुखी आत्मा आए हमारे सम्मुख, हंसती हुई चली जाए, सुख का स्वरूप बन के चली जाए। अशांत आत्मा आए, शांति के सागर में लहराती हुई चली जाए, हम उसका रूप बदल सके। वो तभी होगा जब हमने ज्वालामुखी रूप, अग्नि का सा स्वरूप ये धारण किया होगा। बाबा यही, बाबा से यही अनुभव होता था, बाबा के सम्मुख जाते थे, बस ये करेंगे, बस तुरंत ही सब जैसे भूल जाते थे। अब बाबा से वो वाइब्रेशन, शांति, शक्ति के वही लेने में लग जाते थे। तो बस अभी यही आवश्यकता है अंत में, कि ये सब कब होगा, जब हमने ये जो अपनी नेचर बदली हुई होगी, मन जीते हुआ का प्रकृति से हमने अपनी नेचर मिलाई हुई होगी, ये नेचर, पांच तत्व वो भी नेचर है, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, और ये भी हमारी नेचर है, कहते हैं ना, ये मेरी नेचर है, स्वभाव है, मैं चाहता तो नहीं क्रोध करना, क्रोध आ जाता है, मैं चाहता तो नहीं था ये मुंह से बोलना, मुंह से ये शब्द निकल गया। तो ये नेचर, उस नेचर को मिला देंगे तो प्रकृति जीत भी बन जाएंगे। तो सभी चीज को जब जीत लिया, मनुष्यों को, पशु पक्षी जीव जंतु और प्रकृति को भी, तो जगत जीत बन ही गया। तो बस अब ये आवश्यकता है इस अभ्यास की। तो आइए हम सब मिलके यही दृढ़ संकल्प अंत में करें कि हाँ बाबा, मुझे आपके समान ही बस प्रकृति जीत बनना है, मन जीते जगत जीत बन के अंत में विजय प्राप्त करके हम कलप पहले की तरह विजय माला का मणका बन के ही दिखाएंगे। ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति। आदरणीय भ्राता मोहन सिंगल जी ने अपने जीवन के गहन अनुभव और बाबा के चरित्रों द्वारा हमारे को भरपूर किया, सभी भरपूर हुए, तो जोरदार थैंक्स भ्राता जी का दिल की गहराइयों से। मैं बैठा बैठा सोच रहा था, मन में आ रहा था, जिसको भी सुनते हैं एक से एक बड़ा महान, और ऐसे लगता है कि इनके तन से बोल रहा है शिव भगवान। तो ऐसे बाबा का अनुभव जैसे हम सबको लगता है, जैसे साकार में बाबा अपने बच्चों की पालना कर रहे हैं। तो एक बार फिर धन्यवाद करते हैं। थैंक्स थैंक्स। ओम शांति।